एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम गोता लगा रहे हैं जोसेफ कॉनराड के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उपन्यास में।
हाँ, नोस्ट्रोमो, अ टेल ऑफ द सीबोर्ड।
बिल्कुल, कॉनराड जो पोलैंड में जन्मे थे और फिर अंग्रेजी में महारत हासिल की उन्होंने,
उनके समुद्री अनुभवों का बहुत असर दिखता है उनके लेखन में। हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, हम सब जानते हैं।
लेकिन नोस्ट्रोमो जो 1904 में आया वो एक अलग ही स्तर का काम है ना?
हाँ, बहुत बड़ा कैनवस है, एक काल्पनिक दक्षिण अमेरिकी देश कोस्टा गुआना,
और उसका एक प्रांत सुलाको,
वहीं सेट है पूरी कहानी। राजनीति, क्रांति, विदेशी पैसा,
और जिसे कॉनराड कहते हैं मटीरियल इंटरेस्ट्स, मतलब वो भौतिक हितों का जाल।
हाँ,
आज हम उसी जाल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये रिश्तों को, आदर्शों को उलझा देता है।
बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है सुलाको से। ये एक ऐसा प्रांत है जो पहाड़ों से घिरा है, और इसकी किस्मत पूरी तरह से जुड़ी है सैंटो में चांदी की खादान से।
अच्छा।
सालों की उथल पुथल के बाद एक अंग्रेज है, चार्ल्स गोल्ड, इंजीनियर है
जी,
वो, इस खदान को फिर से शुरू करता है।
चार्ल्स गोल्ड, हाँ, ये बड़ा अहम किरदार है।
हाँ, और वो काफी आदर्शवादी है। उसे लगता है कि पैसा मतलब आर्थिक तरक्की इस पिछड़े अस्थिर देश में स्थिरता लाएगी, न्याय लाएगी।
हाँ, एक विश्वास है उसमें, शायद इसलिए भी कि उसके पिता को यहीं कोस्टोगुआना में बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, राजनीतिक शिकार हुए थे वो।
सही, तो चार्ल्स जैसे उस इतिहास को ठीक करना चाहता है।
लेकिन ये आदर्शवाद, क्या ये खतरनाक भी हो सकता है जब कोई एक विचार, जैसे तरक्की का ही विचार, जुनून बन जाए?
बिल्कुल, ये सवाल तो उपन्यास के बिल्कुल केंद्र में है। चार्ल्स की पत्नी है एमिलिया गोल्ड।
हाँ, एमिलिया।
वो बहुत समझदार हैं, नेक दिल हैं। वो पति के इरादों का समर्थन तो करती हैं, सोचती हैं कि खदान की दौलत से स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लोगों का भला होगा।
लेकिन
उनके मन में एक डर भी रहता है, कहीं ये चांदी लोगों की आत्मा पर भारी न पड़ जाए।
ये चिंता बहुत महत्वपूर्ण है।
और फिर आता है वो किरदार जिसके नाम पर ही उपन्यास है, नोस्ट्रोमो।
नोस्ट्रोमो, हमारा आदमी।
हाँ, उसका असली नाम गियोवानी बतिस्ता फिदेंजा है, पर सब उसे नोस्ट्रोमो बुलाते हैं। वो इतालवी मजदूरों का मुखिया है, कपताज दे कार्गादोरेस।
सुलाको के बंदरगाह पर उसकी बड़ी धाक है।
बहुत लोग उसे उसकी हिम्मत के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए पूछते हैं। वो एक तरह से सुलाको की शान है। अमीर लोग, ताकतवर लोग, सब उस पर भरोसा करते हैं।
तो मतलब मंच तैयार है, एक तरफ चार्ल्स गोल्ड और उसका तरक्की का सपना,
दूसरी तरफ एमिलिया की नैतिक चिंताएं,
और बीच में नोस्ट्रोमो जिसकी इज्जत इस पूरे खेल के लिए जरूरी है।
लेकिन कॉनराड हमें दिखाते हैं कि ये चांदी सिर्फ दौलत नहीं है, ये एक ताकत है, एक नशा है।
हाँ, एक अशुभ शक्ति कह सकते हैं।
बिल्कुल, जो धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में लेती है। नेक इरादे भी इसके आगे फीके पड़ जाते हैं,
और ये बहुत जल्दी साफ भी हो जाता है ना?
हाँ, कोस्टगवाना में फिर से राजनीतिक उथल पुथल मच जाती है।
मोंटेरो बंधु।
हाँ, उनकी क्रांति, सुलाको जो वैसे ही अलग थलग है, अब खतरे में पड़ जाता है।
और वो चांदी जो पहले तरक्की का प्रतीक थी,
वो अब एक दीनदारी बन जाती है, एक बोझ। उसे क्रांतिकारियों से बचाना है, खासकर पेड्रो मोंटेरो का भाई है जनरल सोटिल्लो, बड़ा लालची है।
यहीं से कहानी का नैतिक पहलू और गहरा हो जाता है।
हाँ, अब सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है,
सवाल ये है कि क्या इंसानियत, मतलब वफादारी, प्यार, इज्जत, ये सब पैसे की इस अंधी दौड़ में बच पाएगा?
और इसी उथल पुथल में हम दूसरे किरदारों से भी मिलते हैं। डॉक्टर मॉर्निंगहम है।
हाँ, वो कड़वा सच बोलने वाले डॉक्टर जिनके अतीत में कुछ दर्दनाक है,
यातना के घाव हैं। और मार्टिन डिकाउड,
पेरिस से लौटा हुआ बुद्धिजीवी पत्रकार,
थोड़ा कटा हुआ सा।
हाँ, अपने देश के जुनून से थोड़ा अलग थलग।
तो हालात बिगड़ते हैं
बहुत,
और चार्ल्स गोल्ड एक बड़ा जोखिम लेता है
चांदी को बाहर निकालने का।
हाँ, चांदी की एक बड़ी खेप को एक नाव में लादकर सुलाको से चुपचाप बाहर भेजना है, ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे।
और ये काम वो सौंपता है
नोस्ट्रोमो को, उसके सिवा कौन कर सकता था भला?
सही बात है।
नोस्ट्रोमो के साथ मार्टिन डिकाउड को भी भेजा जाता है।
अंधेरी रात, शांत दिखने वाली खाड़ी, गोल्फो प्लेसिडो।
लेकिन वो शांति एक धोखा है। समंदर में उनकी नाव टकरा जाती है।
किससे?
जनरल सोटिल्लो के सैनिकों को ले जा रहे जहाज से। किस्मत से नाव बच जाती है पर नुकसान होता है।
फिर
वो पास के एक वीरान द्वीप पर पहुंचते हैं ग्रेट इजबल, और चांदी का वो भारी खजाना वहीं छुपा देते हैं।
और डिकाउड वहीं रुक जाता है खजाने की रखवाली के लिए।
हाँ,
और नोस्ट्रोमो?
नोस्ट्रोमो तो माहिर तैराक है, वो तैरकर वापस सुलाव को पहुंचता है
और खबर फैला देता है कि चांदी डूब गई।
हाँ, कि चांदी समंदर में खो गई। इससे तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती है, वो हीरो बन जाता है।
फिर वो एक और बहादुरी का काम करता है,
है ना?
बिल्कुल,
पहाड़ों के पार जाकर जनरल बैरियोस की वफादार सेना को बुला लाता है। इससे सुलाको को बचाने में बहुत मदद मिलती है।
लेकिन उस द्वीप पर डकआउट का क्या हुआ, अकेला?
हाँ, डकआउट वो तो बुद्धिजीवी था, संशयवादी, दुनिया को शक की निगाह से देखता था।
पर अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया
बुरी तरह। जब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, कोई समाज नहीं, कोई दर्शक नहीं, तो उसका अपना होना ही उसे खोखला लगने लगा।
उसके सारे विचार, उसका संदेह, सब बेकार हो गए।
और अंत में उसने उन्हीं चांदी की सिल्लियों से, जिन्हें वो शायद तो समझता था, खुद को भारी किया और समंदर में कूद गया।
उफ, ये कॉनराड का बहुत ही तीखा बयान है। इंसान को जुड़ाव की कितनी जरूरत है।
हाँ, बिना किसी समुदाय, बिना विश्वास के पहचान कितनी खोखली हो जाती है।
तो नोस्ट्रोमो की बहादुरी और बैरियोस की सेना से सुलाको आजाद हो जाता है।
हाँ, वो कोस्टगवाना से अलग होकर ऑक्सीडेंटल रिपब्लिक बन जाता है।
सतह पर तो ये जीत लगती है, खदान बच गई, विदेशी पैसा बच गया,
लेकिन क्या ये सचमुच की आजादी है?
हाँ, या बस एक नया मुखौटा जिसके पीछे वही पुराने आर्थिक हित काम कर रहे हैं।
यहीं से किरदारों का असली पतन हमें दिखता है।
चार्ल्स गोल्ड को ही लें।
हाँ,
वो जिस खदान को स्थिरता लाने वाला समझता था, अब वो खुद उसका गुलाम बन गया है।
बिल्कुल।
कॉनराड लिखते हैं ना कि सफल कार्रवाई की जरूरतों में ही कुछ ऐसा था जो विचार का नैतिक पतन ले आया।
सही।
उसका आदर्शवाद एक अंधा जुनून बन गया।
अपनी पत्नी एमिलिया से भी वो भावनात्मक रूप से कट गया, रिश्ता बस नाम का रह गया।
उसने सुलाको को सफल बनाया पर अपनी आत्मा खो दी।
वो पूंजीवाद के उस चेहरे का प्रतीक बन जाता है जो तरक्की के नाम पर इंसानियत को ही भुला देता है।
और एमिलिया गोल्ड, वो इस कहानी की नैतिक चेतना है।
हाँ, वो सब देख रही हैं, अपने पति का बदलाव, समाज में बढ़ता लालच, चांदी का जहर, सब।
वो नेक काम करना चाहती हैं, मदद करना चाहती हैं, पर वो अकेली हैं।
सब उनका आदर करते हैं पर उनके दर्द को कोई नहीं समझता।
हाँ, वो एक ऐसी दुनिया में फंसी हैं जो बाहर से तो चमक रही है पर अंदर से बिल्कुल खोखली है। उनका दुख उस क्रूर सच्चाई के सामने एक मूक विरोध जैसा है।
और फिर नोस्ट्रोमो, उसका बदलाव सबसे जटिल है, सबसे दुखद।
हाँ, याद है कैप्टन मिचेल ने कहा था, एक ऐसा आदमी जिसके लिए अपनी अंतरात्मा की मंजूरी जरूरी है।
कितनी बड़ी विडंबना है ये, क्योंकि असल में नोस्ट्रोमो की पूरी पहचान बाहरी इज्जत पर दिखी थी,
लोगों की वाहवाही पर। उसके अंदर अपनी कोई नैतिक दिशा थी ही नहीं।
तो जब उसे लगा कि चांदी बचाने के उसके काम का सही इनाम नहीं मिला,
हाँ,
उसे लगा कि अमीर लोगों ने, गोल्ड जैसों ने बस उसका इस्तेमाल किया,
ये एहसास
कि उसकी कदर नहीं हुई,
और साथ में उस छिपे हुए खजाने का राज, ये दोनों चीजें मिलकर उसे अंदर से खोखला करने लगी। दुनिया की नजर में वो अब भी हीरो था, हमारा आदमी,
पर अंदर ही अंदर वो बदल चुका था। वो अब उस खजाने का मालिक था, पर असल में वो उसका गुलाम बन गया था।
उसका गर्व लालच में बदल गया।
हाँ, वो मशहूर नायक अब एक चोर बन गया था, जो रात के अंधेरे में अपनी ही चुराई हुई दौलत निकालता था।
उसकी सार्वजनिक छवि और उसकी गुप्त सच्चाई, इसके बीच एक गहरी खाई बन गई
जो लगातार बढ़ती गई।
डॉक्टर मॉर्निंगहम का किरदार भी है।
हाँ, वो भी बहुत अहम है। अतीत में यात्राएं सही थी उन्होंने, शायद दबाव में साथियों को धोखा भी दिया था।
उस अपराध बोध ने उन्हें कड़वा और शक्की बना दिया।
लेकिन एमिलिया गोल्ड के प्रति उनकी जो गहरी वफादारी है, उनकी चिंता है, वो दिखाती है कि इंसानियत अभी बाकी है।
जैसे वो एमिलिया की नेकी के जरिए अपना प्रायश्चित करना चाहते हों।
हाँ, कह सकते हैं। उनका चरित्र दिखाता है कि इंसान कितना जटिल होता है, कड़वाहट और करुणा एक साथ।
कहानी का तीसरा हिस्सा, द लाइट हाउस, कुछ साल बाद का समय।
हाँ, ऑक्सीडेंटल रिपब्लिक अब एक स्थिर समृद्ध देश है, पर कॉनराड दिखाते हैं कि ये तरक्की कितनी खोखली है।
ये पूरा देश असल में सेंटो में खदान की ही देन है, उसी पर टिका है।
और विडंबना देखिए, ग्रेट इजाबेल द्वीप पर जहां वो खजाना छिपा है,
वहां अब एक लाइट हाउस बना दिया गया है रोशनी दिखाने के लिए।
कमाल की विडंबना है।
चार्ल्स गोल्ड अब कैसा है?
वो तो बस अपने खदान में खोया हुआ है, जैसे एक जीता जागता पत्थर। एमिलिया के साथ रिश्ता बस एक ठंडा समझौता है। डॉक्टर मॉर्निंगहम चुपचाप एमिलिया का ख्याल रखते हैं।
और नोस्ट्रोमो,
उसकी कहानी अंत की ओर बढ़ रही है।
हाँ, वो अब भी यही महसूस करता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई। वो उस चांदी के राज के बोझ तले दबा हुआ है।
वो दोहरा जीवन जी रहा है।
बिल्कुल।
रात में चुपके से द्वीप पर जाकर चांदी की सिल्लियां लाता है और अपनी इन यात्राओं को छुपाने के लिए
वो लाइट हाउस कीपर बूढ़े जॉर्जियो वियोला की बेटी से शादी कर लेता है।
हाँ, बड़ी बेटी लिंडा से। वियोला जो कभी खुद एक आदर्शवादी क्रांतिकारी था।
लेकिन नोस्ट्रोमो का दिल तो लिंडा की छोटी बहन पर आ जाता है, जिजेल पर।
हाँ, एक और धोखा जो उसके पतन को और गहरा करता है।
और फिर अंत।
एक रात जब वो खजाना निकालने द्वीप पर गया है, बूढ़ा वियोला उसे जिजेल से मिलने आया कोई प्रेमी समझ लेता है
और अंधेरे में गोली चला देता है।
हाँ, नोस्ट्रोमो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे मरणासन हालत में एमिलिया गुल्ड के पास लाया जाता है।
वो आखिरी पलों में एमिलिया को राज बताना चाहता है।
शायद एमिलिया ही वो अकेली इंसान थी जिस पर वो अब भी थोड़ा भरोसा करता था। वो कोशिश करता है बताने की, लेकिन बता नहीं पाता।
उसकी मौत के साथ वो राज भी दफन हो जाता है।
चांदी वहीं छिपी रह जाती है, सुलाको की उस नई चमकदार पर बेजान तरक्की पर एक सियाह साये की तरह।
और नोस्ट्रोमो, जो कभी लोगों की इज्जत का, उम्मीदों का प्रतीक था,
वो एक अकेले बदनाम चोर की मौत मरता है। अंत बहुत ही निराशाजनक है।
वाकई ये कहानी हमें बहुत गहरे सवालों पर ले जाती है। सबसे पहला तो वही भौतिक हितों वाला थीम।
हाँ, पैसा और सत्ता की ताकत का इंसान पर असर।
चांदी यहां सिर्फ धातु नहीं है, वो पूंजीवाद की उस अनदेखी बेरहम ताकत का प्रतीक है जो सब कुछ निगल लेती है।
चार्ल्स गुल्ड उसे तरक्की का औजार समझता है, पर वो उसके हाथ से निकलकर एक राक्षस बन जाती है।
वो रिश्ते तोड़ती है, आदर्शों को भ्रष्ट करती है, नोस्ट्रोमो जैसे नायक को चोर बना देती है।
कॉनराड जोसे कह रहे हैं कि जिस समाज की बुनियाद सिर्फ पैसे पर हो, उसका नैतिक रूप से दिवालिया होना तय है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है साम्राज्यवाद और वैश्विक पूंजीवाद का मुद्दा।
हाँ, सुलाको सीधे तौर पर गुलाम नहीं है, पर वो विदेशी पैसे पर निर्भर है, अमेरिकी फाइनेंसर होलरॉयड जैसे लोगों पर।
ये लोग मदद और तरक्की के नाम पर आते हैं,
लेकिन असल में अपने हित साधते हैं, देश के संसाधनों का शोषण करते हैं, राजनीतिक अस्थिरता को हवा देते हैं।
कॉनराड उस वक्त वो दिखा रहे थे जो आज भी कितना सच है, आर्थिक निर्भरता भी गुलामी का ही एक रूप है।
फिर वो भ्रम और हकीकत वाला पहलू भी है, बाहरी छवि और अंदरूनी सच्चाई।
हाँ, सुलाको का गणतंत्र तरक्की का भ्रम है, चार्ल्स गोल्ड नियंत्रण का भ्रम पाले हैं।
और नोस्ट्रोमो, उसकी तो पूरी जिंदगी ही एक सार्वजनिक छवि थी।
जब उसे लगा कि उस छवि का सही मोल नहीं मिला, तो उसके पास टिकने को कुछ बचा ही नहीं।
चांदी का राज उसकी बाहरी वीरता और अंदरूनी चोरी के बीच की दरार बन गया, जिसने उसे निगल लिया।
ये दिखाता है कि सिर्फ दूसरों की नजर में अच्छा होना कितना खोखला है, अगर अंदर कोई नैतिक बुनियाद ना हो।
अकेलापन का डर भी बार बार आता है। डेकआउट का हश्र तो सबसे भयानक है।
हाँ, जहाँ अकेलापन मौत बन जाता है।
पर दूसरे किरदार भी अकेले हैं। चार्ल्स अपनी महत्वाकांक्षा में, एमिलिया अपने दुख में, नोस्ट्रोमो अपने राज के बोझ तले।
ये उस आधुनिक इंसान की त्रासदी है जो भीड़ में भी अकेला है।
और शायद सबसे निराशाजनक बात है, आदर्शवाद की हार।
हाँ, चाहे वो वियोला का पुराना क्रांतिकारी आदर्श हो
या चार्ल्स गुल्ड का आधुनिक तरक्की वाला आदर्श, दोनों ही नाकाम होते हैं या विनाशकारी बन जाते हैं।
एमिलिया की अच्छाई भी कुछ बदल नहीं पाती, वो बस एक बेबस गवाह रह जाती है।
डॉक्टर मॉर्निंगहम की वो बात याद आती है चार्ल्स के बारे में, एक खास विचार का मारा हुआ आदमी पागल होता है, वो खतरनाक होता है, भले ही वो विचार इंसाफ का ही क्यों ना हो।
शायद कॉनराड का यही संदेश है कि दुनिया की क्रूर सच्चाई के आगे हर तरह का आदर्शवाद हार जाता है।
और ये सब कहने के लिए कॉनराड का जो तरीका है वो भी कमाल है, आधुनिकतावादी लेखन।
कहानी सीधी नहीं चलती, समय आगे पीछे होता है, कॉनराडियन टाइम शिफ्ट।
अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी खुलती है, इससे एक रहस्य बना रहता है,
जैसे इतिहास खुद उलझा हुआ होता है।
और प्रतीक, चांदी, शांत खाड़ी, वो बर्फीला पहाड़।
हाँ, हिग्वेरोटा, ये सब कहानी को और गहरा करते हैं।
और उनकी भाषा बहुत घनी, सजीव, जो सिर्फ कहानी नहीं कहती बल्कि पूरा माहौल रच देती है। राजनीति की गर्मी, नैतिक सड़ांत, वो उमस।
वाकई ये एक ऐसा उपन्यास है जो झकझोर देता है, और आज भी मुझे लगता है उतना ही प्रासंगिक है जब हम विकास तरक्की की बातें करते हैं। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरक्की की असली कीमत कौन चुकाता है।
और क्या, इस बाहरी सफलता के पीछे भागते हुए हम अनजाने में अपनी आत्मा का सौदा तो नहीं कर बैठते?
और अगर ऐसा हो जाए तो क्या वापसी का कोई रास्ता बचता है? ये सवाल नोस्ट्रोमो पढ़ने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकृत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।